लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, दुनिया भर में निराधार और झूठ पर आधारित जानकारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इससे लोग गुमराह हो जाते हैं। कोविड-19 महामारी से संबंधित गलत सूचनाओं व दुष्प्रचार के इस तूफान को डिस इन्फोडेमिक कहा गया है, यानी ये भी किसी महामारी से कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान फैलती झूठी सूचनाओं और नफरत संदेशों को रोकने के इरादे से 21 मई को एक नई पहल वेरीफाइड यानी प्रमाणिक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए दुनिया भर में लोगों को सशक्त बनाया जाएगा, ताकि सटीक सूचना साझा करके लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा मिल सके। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान फैलती झूठी सूचनाओं और नफरत संदेशों पर लगाम कसने के इरादे से एक नई पहल शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को वेरीफाइड यानी प्रमाणिक मुहिम की शुरुआत की, जिससे डिजिटल माध्यमों पर भरोसेमंद और सटीक जानकारी की मात्रा और पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स की एक टीम तैयार की जाएगी। गलत जानकारी ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जरिए फैलती है। इसे फैलाने वाले लोग आधुनिक प्रोडक्शन तरीकों और संदेशवाहक माध्यमों का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को इसका मुकाबला करने के लिए लोगों तक पहुंचना होगा और उन तक ऐसी जानकारी पहुंचानी होगी जिस पर वे भरोसा कर सकें। वेरीफाइड मुहिम का नेतृत्व यूएन का ग्लोबल कम्युनिकेशंस विभाग कर रहा है और यूएन न्यूज इसी विभाग का हिस्सा है। यूएन कम्युनिकेशंस विभाग की प्रमुख और अवर महासचिव मलिसा फ्लेमिंग के मुताबिक, अनेक देशों में गलत सूचनाएं डिजिटल माध्यमों से फैल रही हैं, जो महामारी पर जवाबी कार्रवाई के रास्ते में बाधा खड़ी कर रही हैं और अशांति भी फैला रही हैं। वेरीफाइड मुहिम के जरिए इन रुझानों को पलटा जाएगा और मानवीयता को बढ़ावा देने, शरणार्थियों व प्रवासियों के योगदान को रेखांकित करने वाली सामग्री को प्रोत्साहन मिलेगा।
18 और 19 मई को जिनीवा में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य असेंबली आयोजित की गई। इस सत्र में वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र रूप से समीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रदर्शन के मूल्यांकन की बात कही गई है। विश्व स्वास्थ्य असेंबली यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के कामकाज के वार्षिक निरीक्षण से जुड़ा आयोजन है। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 73वें सत्र के दौरान कार्यकारी बोर्ड में 10 नए सदस्य देशों का चुनाव भी किया गया। इसमें भारत, बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाउ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूसी फाउंडेशन और यूनाइटेड किंगडम है। इस कार्यकारी बोर्ड के चेयरपर्सन भारत के स्वास्थ्य मंत्री को चुना गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहास में पहली बार 18-19 मई को यह असेंबली जिनीवा में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। कोविड-19 पर पारित प्रस्ताव को संगठन के सभी 194 सदस्य देशों ने समर्थन दिया है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि इससे वैक्सीनों, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य उपायों पर काम की रफ्तार तेज होगी और बाधाओं को हटाया जा सकेगा। यूएन एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसिस ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र रूप से समीक्षा जल्द से जल्द उपयुक्त समय पर शुरू की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 73वें सत्र के दौरान कार्यकारी बोर्ड में भारत सहित 10 नए सदस्य देशों का चुनाव भी हुआ, जिसके चेयरमैन भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे।
यमन में वर्ष 2014 से सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध चल रहा है। यमन दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट बन गया है। लाखों लोग हिंसा के अलावा भूखमरी और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पीड़ा झेल रहे हैं। युद्ध से बदहाल यमन में वैश्विक महामारी कोविड-19 का फैलाव पहले से ही गंभीर हालत को और विकट बना सकता है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
पिछले कई वर्षों से युद्ध से बदहाल यमन में वैश्विक महामारी कोविड-19 का फैलाव पहले से ही गंभीर हालात को और विकट बना सकता है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं और अतिरिक्त वित्तीय मदद के अभाव में ढह जाएंगी। मानवीय राहत मामलों में समन्वय के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने यह चेतावनी शुक्रवार को जारी की है। महामारी पर नजर रख रहे विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कई अन्य देशों की तुलना में यमन में नाजुक हालात में रह रहे लोगों में वायरस ज्यादा तेजी से और व्यापक स्तर पर फैल सकता है, जिसके घातक नतीजे होंगे। यूएन एजेंसी के प्रवक्ता येंस लार्क ने जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हालात बेहद गंभीर हैं और देश में मानव स्वास्थ्य प्रणाली ढह गई लगती है। पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। उनके पास पर्याप्त निजी बचाव उपकरण नहीं है। उनके मुताबिक यूएन एजेंसी ये मानकर चल रही है कि वायरस स्थानीय समुदाय में व्यापक स्तर पर फैल रहा है। यमन में महज आधी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों पर ही सुविधाएं उपलब्ध रह गई हैं। ऐसे में देश में राहत अभियान के लिए इस साल के अंत तक $2 अरब तक की मदद का उपलब्ध होना बहुत अहम बताया गया है।
कला, संस्कृति, विरासत और लाखों करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत चाय महज एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। गुरुवार 21 मई को पहली बार मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख तिजानी मोहम्मद बांडे ने टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा में चाय के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर अंजू शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था, ताकि ग्रामीण विकास और टिकाऊ आजीविका में चाय की अहमियत को रेखांकित किया जा सके। महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने कहा कि ये सोचना अविश्वसनीय है कि चाय के एक प्याले में मौजूदा समय में दुनिया के बहुत से बुनियादी मुद्दों का सार है। उन्होंने कम आय वाले कुछ देशों में चाय उद्योग को आय और निर्यात के जरिए मिलने वाले राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बताया और कहा कि चाय उत्पादन और प्रसंस्करण कार्य से विकासशील देशों में लाखों लोगों का जीवन यापन होता है। चाय बेहद अहम नकदी फसलों में शामिल है।
श्रोताओ, एक तरफ भारत में कोरोना महामारी बढ़ती ही जा रही है, अब तक इससे 1,66,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,706 लोगों की मौत हुई है, तो दूसरी तरफ देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों के सबसे भयानक हमले से राजस्थान के 20 जिलों में करीब 90,000 हेक्टर फसलें और हरियाली उजड़ गई है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक ने बृहस्पतिवार को अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन सबसे खतरनाक चेतावनी संयुक्त राष्ट्र यूएन के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दी है। टिड्डी दलों के बिहार, ओडिशा तक पहुंचने की चेतावनी देने के साथ ही मानसूनी हवाओं के साथ जुलाई में दोबारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान लौटने की भी चेतावनी दी है। श्रोताओ, आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
कृपा वरदान अनुग्रह दो, जो फिर में मुझे कर दो, जो फिर में मुझे
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 30 मई को विश्व के समस्त कैथोलिक विश्वासियों को उनके साथ मिलकर रोजरी माला विनती के पाठ हेतु आमंत्रित किया है। संत पापा एक बार फिर संपूर्ण मानव जाति से आग्रह कर रहे हैं कि वह रोजरी माला विनती में एक प्राण होकर कोविड महामारी के दौरान सहायता हेतु प्रभु ईश्वर से याचना करे। वैटिकन ने प्रकाशित किया कि शनिवार 30 मई को रोम समयानुसार संध्या 5:30 बजे संत पापा फ्रांसिस वैटिकन उद्यान स्थित लूर्द की रानी मरियम को समर्पित गुफा से रोजरी विनती का पाठ करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व के समस्त कैथोलिक धर्मानुयायी तथा सभी शुभचिंतक आमंत्रित हैं। नवीन सुसमाचार प्रचार संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के तत्वाधान में रोजरी माला विनती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका शीर्षक प्रेरित चरित ग्रंथ के पहले अध्याय के 14वें पद से लिया गया है, जिसमें लिखा है मरियम के साथ प्रार्थना में लीन। डिजिटल स्ट्रीमिंग द्वारा समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा, हालांकि वैटिकन के यूट्यूब चैनल तथा अन्य डिजिटल मीडिया द्वारा भी इसे प्रसारित किया जाएगा। कोविड महामारी से विशिष्ट प्रभावित विभिन्न वर्गों के पुरुषों और महिलाओं द्वारा रोजरी माला विनती के भेदों का पाठ किया जाएगा। वैटिकन गार्डन की मरियम गुफा में आयोजित इस समारोह में चिकित्सकों, उपचारकों, स्वास्थ्य कर्मियों, अस्पतालों की प्रेरितिक देखरेख करने वाले पुरोहितों, पत्रकारों और रोगियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संत पापा फ्रांसिस ने यूके और आयरलैंड की कैथोलिक कलीसिया को जीवन संबंधी वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश भेजकर अपनी आशीष प्रदान की है तथा आग्रह किया है कि हर परिस्थिति में मानव जीवन की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाए। यूके और आयरलैंड के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन द्वारा प्रायोजित जीवन को समर्पित दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक परिस्थिति में मानव जीवन के अर्थ और मूल्य के विषय में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इस दिवस का आदर्श वाक्य है जीवन को चुनो। कैथोलिक धर्म शिक्षा के अनुसार जीवन को पोषित करना तथा गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक उसकी रक्षा करना मानव का परम कर्तव्य है। संत पापा फ्रांसिस ने यूके तथा आयरलैंड के कैथोलिक धर्माधीक्षों को प्रेषित संदेश में जीवन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा हर परिस्थिति में जीवन की रक्षा का आग्रह किया है। संत पापा की आशा है कि मौजूदा स्वास्थ्य संकट से जीवन की संस्कृति का उदय होगा, जो ईश्वर की सभी संतानों, विशेष रूप से सबसे दुर्बल लोगों की सुरक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संत पापा फ्रांसिस की ओर से धर्माध्यक्षों को उक्त संदेश प्रेषित किया है। इसमें यह भी स्मरण दिलाया गया है कि इस वर्ष मानव जीवन के मूल्य और उसकी अनुलंघनीयता पर प्रकाशित संत जॉन पॉल द्वितीय के विश्व पत्र एवांगेलियम वीते की 25वीं वर्षगांठ है। संत पापा फ्रांसिस की ओर से कार्डिनल पारोलिन ने लिखा, इन दिनों में जब विश्व कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, संत पापा फ्रांसिस उन सभी परिवारों, स्वयं सेवकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना का आग्रह करते हैं जो वीरतापूर्वक पीड़ितों की देखभाल कर रहे हैं तथा निर्धनता और महामारी के बीच प्रत्येक मानव व्यक्ति के ईश प्रदत्त मूल्य और गरिमा को कायम रखने के लिए प्रयत्नरत हैं। रोम में येसु धर्म समाज द्वारा संचालित अस्थाली शरणार्थी केंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने एक संदेश प्रेषित किया है, जिसका प्रकाशन गुरुवार को रोम में किया गया। संदेश में कहा गया, आपका उदाहरण समाज में स्वागत और एकजुटता की प्रामाणिक संस्कृति को बढ़ावा देने की एक नई इच्छा को प्रज्वलित करता है। रोम स्थित येसु धर्म समाजी शरणार्थी केंद्र अस्ताली के निर्देशक फादर कमिलो रिपामोंती को प्रेषित संदेश में संत पापा ने केंद्र के निर्देशक, स्वयं सेवकों और कर्मचारियों को इस नाजुक क्षण में आप्रवास की चुनौती का सामना करने वाले तथा युद्ध, उत्पीड़न और गंभीर राजनीतिक संकट से भाग रहे शरणार्थियों की सहायता हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने उन शरणार्थियों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की जिनका स्वागत अस्ताली केंद्र भ्रातृ प्रेम की भावना में करता रहा है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना और स्नेह के साथ आध्यात्मिक रूप से आप सभी के निकट हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों के बीच शांति, न्याय और भाईचारे की दुनिया में विश्वास और आशा रखें। केंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए संत पापा ने लिखा, आपका व्यवहार आप प्रवास के जटिल तथ्य के प्रति बुद्धिमानी और उदारता का द्योतक है तथा उन मानवीय और ख्रिस्तीय मूल्यों का प्रमाण है जिस पर यूरोपीय सभ्यता की नींव टिकी हुई है। संत पापा फ्रांसिस का पत्र अस्ताली केंद्र की 2020 वार्षिक रिपोर्ट के जवाब में आया। रिपोर्ट में इटली में शरण मांगने वालों की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 20,000 है, जिनमें से आधे राजधानी रोम में हैं। वेटिकन ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी की स्थिति में बढ़ती असहिष्णुता और असमानता के बीच धार्मिक रूप से प्रेरित घृणा अपराधों में वृद्धि हो रही है। इस सप्ताह असहिष्णुता और भेदभाव के प्रति जागरूकता को बढ़ाने हेतु यूरोप में सहयोग और सुरक्षा संबंधी संगठन का 25 और 26 मई को सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें वेटिकन की ओर से परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मान्यवर यानूस उर्बानसिक उपस्थित थे। मान्यवर उर्बानसिक ने कहा, ईसाइयों और अन्य धर्मों के सदस्यों के खिलाफ घृणा अपराधों में इजाफा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इनमें धमकी, हिंसक हमले, हत्याएं और गिरजाघरों तथा पूजा स्थलों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक संपत्तियों पर हमले शामिल हैं। वेटिकन के प्रतिनिधि ने धार्मिक विश्वास और धर्म पालन के बीच विभाजन के बारे में गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने सचेत किया, यह भ्रामक धारणा कि धर्मों का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है या ये हमारे समाजों की भलाई के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं सरासर गलत है। मान्यवर उर्बानसिक ने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रायः दूसरों को नीचा दिखाने अथवा सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और धार्मिक समूहों द्वारा घृणा उकसाने का स्थान बन जाता है। दुर्भाग्यवश कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को बदतर कर दिया है, इसलिए कि लॉकडाउन के दौरान लोग ऑनलाइन पर अधिकाधिक समय बिता रहे हैं। इस बात की ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि सोशल मीडिया पर भेदभाव हिंसा को प्रश्रय दे सकता है, जो मजाक से शुरू होकर सामाजिक असहिष्णुता तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने असमानता और भेदभावों को बढ़ावा दिया है तथा इस महामारी के बीच अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन जारी है, जिनमें गिरजाघरों का बंद होना तथा धर्म पालन पर लगे प्रतिबंध भी शामिल हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।